यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 226वां दिन, अच्छाई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करें। इतिहास बहुत से तरीकों से प्रभाव की एक कहानी है। लीडरशिप प्रभाव के विषय में है। हर कोई किसी दूसरे को प्रभावित करता है, इसलिए हर एक व्यक्ति एक लीडर है। समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले बताते हैं, यहाँ तक कि सबसे अंतर्मुखी व्यक्ति अपने जीवन काल में 10,000 लोगों को प्रभावित करेगा। हम सभी हर तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोपहर के भोजन में क्या बनाना है और कौन सी फिल्म देखनी है, सच्चाई और नैतिकता के महत्वपूर्ण मामले हैं। जैसे ही मैं अपने जीवन के भूतकाल में देखता हूँ, मैं बहुत से लोगों के द्वारा प्रभावित हुआ हूँ। मेरे माता पिता, शिक्षक मित्र और परिवार। जैसे कि मैं दूसरों के द्वारा प्रभावित हुआ, अपरिहार्य रूप से जो मैं करता हूँ और कहता हूँ, वह दूसरों को अच्छे या बुरे के लिए प्रभावित करेगा। जैसा कि अफ्रीकी नीतिवचन ऐसा कहता है, यदि आप सोचते हैं कि एक अंतर पैदा करने के लिए आप बहुत छोटे हैं, तो आपने मच्छरों के साथ एक रात नहीं बिताई है। एक परेशान करने वाले तरीके से मच्छर एक अंतर पैदा करते हैं, लेकिन सिद्धांत समान है। एक व्यक्ति बड़े अन्याय को रोक सकता है, एक व्यक्ति सच्चाई की आवाज़ बन सकता है, एक व्यक्ति की दयालुता एक जीवन को बचा सकती है। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कैसे आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं और भलाई के लिए उस प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। भजन संहिता 96:1-13। सभी की भलाई के लिए परमेश्वर ने इसराइल को चुना। एक विशेष तरीके से उन्होंने इसराइल के लोगों को आशीष दी। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि वे दूसरों से अधिक अभिमानी और वरिष्ठ महसूस करें। इसके बजाय वह संपूर्ण विश्व के लिए एक आशीष बने। एक आशीष बनने के लिए वह आशीषित किए गए थे। संपूर्ण देश की भलाई के लिए वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए थे। अब परमेश्वर ने हमें इस चर्च में चुना है ताकि सभी लोगों के लिए एक आशीष बने। आप एक आशीष बनने के लिए आशीषित किए गए हैं। इस भजन में एक बहुमुखी केंद्र है। यह सभी को परमेश्वर के आश्चर्यकर्म और आशीषों का वर्णन करता है। आप इनके द्वारा आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। 1, आराधना। यह ध्यान देना एक दिलचस्प बात है कि आराधना को रचनात्मक होना चाहिए और इसमें नई चीजें जोड़नी चाहिए। यहोवा के लिए एक नया गीत गाइए। 2, गवाही। उनके नाम को धन्य कहिए। दिन प्रतिदिन उनके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहिए। अन्य जातियों में उनकी महिमा का और देश देश के लोगों में उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करिए। इस संदेश को ले जाइए, परमेश्वर राज्य करते हैं। परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। कभी भी अंदर देखने वाले या स्वयं में लिप्त न बने। होने दीजिए कि एक व्यक्ति के रूप में और एक समुदाय के रूप में जो कुछ हम करते हैं, वह बाहर केंद्रित हो, ताकि मैं विश्व में आशीष को लाऊं, प्रतिदिन आपके उद्धार की घोषणा करते हुए। नया नियम 1 कुरिन्थियों 9:1-18। अच्छे समाचार को फैलाने के लिए पौलुस गहराई से अपने प्रभाव के प्रति सचेत हैं। एक मसीह के रूप में और विशेष रूप से एक प्रेरित के रूप में वह पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं कि अच्छाई के लिए अपने प्रभाव को बढ़ाएं और हर उस वस्तु को दूर करें जो मसीह के सुसमाचार में बाधा डालती है। ऐसा लगता है कि अव्याहत रहने के लिए अपनी बुलाहट को वह एक तरीके से रूप में देखते हैं जिससे वह अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। वह नहीं बता रहे हैं कि विवाह के साथ कुछ गलत बात है। ऐसा दिखाई देता है कि दूसरे प्रेरित प्रभु के भाई और कैफा सभी विवाहित थे। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका जो वह खोजते हैं, वह है दूसरी नौकरी करना, जीविका जीने के लिए काम करना। वह यह बताने में उत्साहित हैं कि उन्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो, या जैसा कि यूजीन पीटरसन अनुवाद करते हैं, जो संदेश को फैलाते हैं उनकी मदद वे लोग करें जो संदेश पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह के रूप में हमें आर्थिक रूप से उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो पूरे समय सुसमाचार का प्रचार करते हैं। पौलुस कहते हैं कि यद्यपि उनके पास यह अधिकार था, उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। पौलुस पूरी तरह से सुसमाचार का प्रचार करने के विषय में उत्साहित हैं। वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज इसके अधिक प्रभाव में रुकावट डाले, इसलिए वह अपने किसी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका मिशन सर्वोच्च है, वह प्रचार करने के लिए विवश हैं। वह लिखते हैं, हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। वह सरलतापूर्वक एक बाध्यता को बताते हैं जो वह महसूस करते हैं। वह सबसे अधिक यह चाहते हैं कि लोग मुक्त रूप से सुसमाचार को सुन पाएं। मुक्त रूप से सुसमाचार का प्रचार करने के अवसर से वंचित रहने के बजाय वह मरना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यही कारण है कि क्यों हम निर्धारित करते हैं कि अल्फा करने के लिए किसी को भी दाम चुकाना न पड़े। यही कारण है कि हमें हर उस प्रयास को रोकना है जो हमें मेहमानों से पैसे लेने के लिए राजी करने की कोशिश करती है, जैसे कि ये अल्फा समाप्त करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग सुसमाचार सुनने की सुविधा के लिए सीधे या किसी माध्यम से दाम चुकाएं। पौलुस कहते हैं, मैं इसके बजाय मरना पसंद करूंगा। मुझे याद है जब बिली ग्रहम 1989 में लंदन में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आए, एक बार यह सलाह दी गई कि टिकट व्यर्थ न जाए, इसके लिए इसे एक मामूली कीमत 1 रुपये में बेचा जाए। सलाह को अस्वीकार कर दिया गया। बिली ग्रहम ने दृढ़ संकल्प लिया था कि वह हमेशा मुफ्त रूप से सुसमाचार का प्रचार करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम हमेशा प्रेरित पौलुस के उदाहरण पर चलें और सुसमाचार के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ाएं, इसे मुक्त रूप से उपलब्ध करने के द्वारा और मसीह के सुसमाचार में रुकावट डालने वाली हर चीज को दूर करने के द्वारा। पुराना नियम सभोपदेशक 9:13-12-14 तक, अच्छे बीजों को बोने के लिए। सुलेमान प्रभाव की सामर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं। यह प्रभाव अच्छाई या बुराई के लिए हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक शहर को बचा सकता है, दूसरी ओर एक पापी बहुत अच्छाई को नष्ट करता है। हिटलर, स्टालिन और पॉल पॉट इस सिद्धांत के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक मनुष्य बुराई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है और बड़ी हानि पहुंचा सकता है, लेकिन प्रभाव को इनकी तरह अत्याचारी होने की आवश्यकता नहीं है ताकि बुरा प्रभाव डाले। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बांसने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यदि एक मरी हुई मक्खी बुरा प्रभाव बना सकती है, एक कम प्रभाव वाला मनुष्य बुराई या अच्छाई के लिए एक प्रभाव बना सकता है। हम सभी मरहम में मक्खी बन सकते हैं। लेखक इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि एक अच्छा प्रभाव कैसे बनना है इसके बजाय कि बुरा प्रभाव कैसे बनना है। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दें। सुलेमान हमें याद दिलाते हैं कि बुद्धिमान के मुंह से वचन अनुग्रही होते हैं। शांति से गुस्सैल शब्दों को उत्तर दीजिए। कानाफूसी करना और लीडर्स की निंदा करने से दूर रहें। सावधान रहिए कि आप क्या कहते हैं या सोचते हैं। राजा को मन में भी शाप न देना, न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट कर देगा। 2, खतरा मोल लीजिए। अच्छाई के लिए अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको खतरा मोल लेने की आवश्यकता है। उदार बनिए, दान देने के निवेश कीजिए। दान उच्च रूप से प्रतिफल देता है। अपनी अच्छाई को जमा मत करिए, उन्हें आसपास फैलाइए। दूसरों के लिए एक आशीष बनिए। दूसरे शब्दों में वह कहते हैं, कुछ भी साहसिक कार्य नहीं, कुछ लाभ नहीं, प्रेम करना है खतरा लेना कि बदले में प्रेम नहीं किया जाएगा। कोशिश करना असफलता का खतरा मोल लेना है, लेकिन खतरा अवश्य ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है कुछ खतरा न लेना। यदि हम अति सावधान हैं तो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। हम इस सिद्धांत को चर्च को रोपने में लगा सकते हैं। इसमें खतरा और दृढ़ संकल्पी की आवश्यकता होगी। हमें जीते ना जा सकने वाले अवरोधों से नहीं डरना चाहिए। हमें हवा और बादलों के कारण हार नहीं माननी चाहिए। 3, अपने प्रयासों को फैलाइए। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको अपने जीवन में विभिन्न अवसरों को लगातार बदलने की आवश्यकता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में मत रखिए, चारों ओर से आगे बढ़िए और हव अवसर का लाभ उठाइए। यही कारण है कि एक चर्च के रूप में हम हर दिशा में बीजों को बोने की कोशिश करते हैं। आराधना, प्रार्थना, लीडरशिप, चेला बनाना, सिद्धांतवादी प्रशिक्षण, सामाजिक बदलाव, सुसमाचार प्रचार, बंदीगृह, गरीबों और पीड़ितों के लिए कार्य के द्वारा। नंबर 4, अपने अवसरों को लीजिए। जीवन थोड़े समय का है, आपके अवसर सीमित हैं। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो वह सभी में आनंदित रहे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। पुस्तक अंत में इसकी सभी खोज और प्रश्न के निष्कर्ष के साथ समाप्त होती है। जीवन का अर्थ परमेश्वर के साथ अपने संबंध में शामिल है। उनका सम्मान कीजिए और उनकी आज्ञाओं को मानिए। हर व्यक्ति के लिए यह पूर्ण कर्तव्य है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि आपका सम्मान करूं और आपकी आज्ञाओं को मानूं। मेरी सहायता कीजिए कि अच्छाई के लिए आपके प्रभाव का इस्तेमाल करूं और ना कि बुराई के लिए। मेरी सहायता कीजिए कि हर अवसर का लाभ लूं जिसे आपने मेरे सामने रखा है।
सबोपदेशक 12:12। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। ये एक भविष्यवाणी का कथन है। क्या सुलेमान जानते थे कि सालों से हर विषय पर कितनी पुस्तकें लिखी जाएंगी? बहुत सी सुंदर, उत्साहित करने वाली पुस्तकें हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी भी हैं। बहुत सालों पहले मुझे थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई जब वह हमारे एक बच्चे की सहायता कर रही थी घर पर किताब को पढ़ने में। उन्होंने कहा, मुझे किताबें पसंद नहीं, उनमें शब्द होते हैं। आज का वचन, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। सबोपदेशक 11:10।